हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। युग कृषा को लेकर हॉस्पिटल आया हुआ था। चेकअप के बाद कृषा डॉक्टर के साथ अकेली थी। मौका देखकर उसने डॉक्टर से हेल्प मांगी और युग का सारा सच बताया। कृषा की बातें डॉक्टर शांति से सुन रहे थे। जैसे ही बात करते हुए कृषा की नज़र दरवाजे पर गई, उसके चेहरे पर डर के भाव थे और वो चुप हो गई। वहीं डॉक्टर ने युग को देखकर मुस्कुराते हुए कंधे उचकाए। युग गुस्से में अंदर आया और डॉक्टर से कहा, मामू आप बाहर जाइए, मैं इससे बात करता हूँ। वो डॉक्टर युग का मामा था। वहीं युग के मुँह से डॉक्टर के लिए मामू शब्द सुनकर कृषा ने डर के मारे बड़बड़ा कर कहा, मामू? इसने अभी अभी डॉक्टर को मामू कहा, इसका मतलब ये डॉक्टर इसका रिलेटिव है, अब तो ये मुझे जान से मार डालेगा। डर के मारे कृषा अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। युग की बात मानकर डॉक्टर बाहर चले गए। उनके जाते ही युग ने दरवाज़ा बंद किया और कृषा के पास आकर सर्द लहजे में कहा, डोंट वरी, मारूंगा नहीं, लेकिन कसर भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए युग ने गुस्से में कृषा को गले से पकड़कर दीवार से लगा दिया। हालांकि उसकी पकड़ काफी ढीली थी, फिर भी कृषा का दम घुटने लगा था और आंखों में आंसू आ गए थे। प्लीज छोड़ो, कृषा अटकते हुए बोली। युग ने कृषा को छोड़ दिया और उसके दोनों हाथ पकड़कर दीवार से लगा दिए। फिर उसने सर्द आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा ऐसे खुलेआम सबके सामने तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आऊंगा मैं? कृषा ने ना में सिर हिलाकर कहा, सॉरी, आगे से कोई गलती नहीं करूंगी, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बोलते हुए कृषा सुभकने लगी। कृषा रोते हुए युग से माफी मांग रही थी कि तभी युग ने अपने होंठ कृषा के होंठों पर रख दिए। वो गुस्से में उसे काफी रफली किस कर रहा था। कृषा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी युग ने उसे नहीं छोड़ा तो कृषा ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दिया। कह तो दिया आगे से किसी से कुछ नहीं कहूंगी, फिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ जबरदस्ती? कृषा चिल्लाकर बोली। उसकी बात सुनकर युग ने ईविल स्माइल के साथ कहा, ये जबरदस्ती थी, एक नॉर्मल सा केस था। जबरदस्ती वर्ड अब मतलब भी पता है तुम्हें? और ऐसे मासूम बनकर खुद को सच्चा साबित करने से कुछ नहीं होगा। माफिया प्रिंसेस हो, अपने फायदे के लिए कितने मर्दों को सिड्यूस किया है तुमने, ये सब तो नॉर्मल है तुम्हारे लिए। जैसे ही युग की बात खत्म हुई, कृषा ने उसके गाल पर कसकर थप्पड़ लगाया। युग का चेहरा दूसरी तरफ झुका हुआ था और आंखें गुस्से से जल रही थीं। ये दूसरी बार था जब कृषा ने गुस्से में युग को थप्पड़ मारा था। हालांकि अब कृषा खुद डर से कांप रही थी। युग ने कृषा की तरफ देखा तो उसके चेहरे को देखकर कृषा जोर जोर से रोने लगी। मैंने जानबूझकर नहीं मारा, तुम मेरे बारे में कुछ भी बकवास बोल रहे थे, कृषा डरते हुए बोली। युग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कृषा को वहीं पर छोड़कर चला गया। कृषा वहां चेयर पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। तभी डॉक्टर अंदर आए। ये युग के मामा थे, जिनका नाम मिस्टर मानव कपूर था। वो हॉस्पिटल उन्हीं का था। तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगा, कुछ ही देर में तुम्हारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, तब तक अंदर जाकर रेस्ट करो, मानव कपूर ने सख्त आवाज में कहा। वो लगभग 45 साल के थे और काफी फिट और फाइन नजर आ रहे थे। कृषा ने उनकी बात पर हामी भरी और अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही मानव ने खुद से बड़बड़ाकर कहा, पता नहीं इस लड़की ने ऐसा क्या कह दिया जो युग गुस्से में यहाँ से बाहर निकला था। आई डोंट अंडरस्टैंड, वो इस लड़की से शादी क्यों कर रहा है? क्या भूल गया है कि इसकी वजह से उसकी माँ की जान गई थी? अगर मजबूरी ना रही होती तो युग के बजाय मैं खुद ही आज इस लड़की को यहाँ मार देता। इस लड़की को देखते हुए ना चाहते हुए भी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि कैसे इसके माँ बाप की वजह से मेरी बहन छाया की जान गई। बोलते हुए मानव की आंखों में कृषा के लिए गुस्सा था। वहीं कृषा अंदर चुपचाप बैठी सुभकते हुए रो रही थी। उसे डर लग रहा था कि उसने युग को थप्पड़ मार दिया, अब वो बदले में उसे क्या पनिशमेंट देगा। पिछली बार जब उसने युग को थप्पड़ मारा था तो युग ने जवाब में उसे वापस लैप किया था। इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ? अरे मेरा बस चलता तो मैं क्यों किसी ऐसी दुनिया में पैदा होती? मैं भी एक नॉर्मल लाइफ बिताना चाहती थी, बाकी लोगों की तरह कॉलेज जाना चाहती थी, जॉब करना चाहती हूँ, कभी कुछ नहीं मिला। ऊपर से ये क्या मेरे बारे में बकवास बोल रहा था? मैं क्यों किसी को सिड्यूस करूंगी? अब तो ऐसे लगने लगा है कि मेरी जिंदगी और जहन्नुम बनने वाली है, कृषा रोते हुए बोल रही थी। अपनी उधेड़ बुन में खोए हुए उसे वहाँ पर नींद आ गई। वहीं युग हॉस्पिटल से निकलकर गुस्से में ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो सीन आ रहा था जब कृषा ने उसे थप्पड़ मारा था। हाउ डेयर शी, उसने एक बार फिर मुझे थप्पड़ मारा, कौन सी गलत बात कह दी थी मैंने उसे? पिछली बार भी मैं गलत नहीं था। मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा ओढ़कर रखते हैं। बहुत कोशिश करता हूँ कि खुद को कंट्रोल में रखूँ और तुम्हें हर्ट ना करूँ, पर तुम कुछ न कुछ ऐसा कर देती हो। तुम्हें तुम्हारे थप्पड़ का जवाब सूद समेत मिलेगा कृषा सिंघानिया, युग ने सर्द लहजे में कहा। कुछ देर में युग घर वापस आ चुका था और आते के सीधा अपने कमरे में चला गया। उसे अकेला घर देखकर हरलीन हैरान थी। वो उससे कृषा के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन युग के तेवर देखकर उसने कुछ नहीं कहा। वहीं हरलीन के अलावा कोई और भी था जिसने युग के इस बर्ताव को नोटिस किया था। वो मिस्टर हर्षवर्धन राणा थे जो किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। हर्षवर्धन जी ने कॉल पर कहा, गलती से भी ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए कि युग इंडिया आया हुआ है। मैंने अपनी तरफ से सारे इंतजाम कर दिए हैं। राणा मेंशन में क्या हो रहा है उसकी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। अब धमाका रिसेप्शन के दिन ही होगा। हर्षवर्धन नहीं चाहते थे कि कृषा और युग की शादी में कोई भी खलल पड़े, इसलिए उनकी शादी की न्यूज़ शादी के बाद ही मीडिया हाउसेस के जरिए लोगों तक जानी थी। गुप्त सूचना। न्यूयॉर्क में सिंघानिया मेंशन में सारा और अर्जुन एक साथ रूम के थे। सारा उदास बेड पर बैठी हुई थी जबकि अर्जुन किसी से कॉल पर बात कर रहा था। कॉल पर किसी आदमी ने कहा, वो इंडिया में भी नहीं है। राणा मेंशन के अलावा मुझे उसके दूसरे ठिकाने का नहीं पता था। लेकिन आप लंदन वाले विला की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपका कहना है कि वो उस जगह पर भी मौजूद नहीं है, तो वो कृषा को लेकर कहाँ जा सकता है? ये पता लगाने का काम तुम्हारा है। मेरी आखिरी उम्मीद इंडिया ही थी, अर्जुन ने हताश आवाज में कहा। हाँ, जानता हूँ। ऐसा भी हो सकता है वो युग के इंडिया आने की बात छुपा रहे हों। मैं कल तक अपने कुछ खास आदमियों को राणा मेंशन भेजकर इस बात का पता लगाता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बहन मिल जाएगी। कॉल पर मौजूद उस आदमी ने अर्जुन को दिलासा दिया। अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। फिर उसने सारा की तरफ देखा जो नज़रें झुकाए बैठी थी। उसे इस तरह देखकर अर्जुन ने कहा, अब सिर झुकाकर बैठने का क्या फ़ायदा है? मैंने कृषा के अलावा अपनी लाइफ में किसी को इम्पोर्टेंस दी थी तो वो तुम थी। तुमने कृषा के लिए जो सैक्रिफाइस किया था उसका मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से वो प्रॉब्लम में आ गई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी भाई, मैं आपको कैसे समझाऊं? गलती से भी युग को इस बात का शक नहीं होने दिया, फिर पता नहीं उसे कैसे पता चल गया। सारा ने अपनी सफाई दी। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। हो सकता है तुमने अपना काम अच्छे से किया होगा, लेकिन यू आर नॉट सक्सेसफुल, अर्जुन ने बेरुखी से जवाब दिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही सारा ने खुद से कहा, मैं इस तरह हार मानकर नहीं बैठ सकती। अगर मेरी वजह से कृषा मुसीबत में आई है तो मैं ही उसे ढूंढ कर लाऊंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ इन सब में कौन मेरी हेल्प कर सकता है। बोलते हुए सारा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। सारा ने कॉल पर कहा, मुझे इंडिया जाना है, मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करवाओ, और हाँ, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अपनी बात कहकर सारा ने कॉल कट कर दिया। सारा जो भी कर रही थी सब कॉन्फिडेंशियली कर रही थी। उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे इंडिया जाना था। अगली सुबह युग और कृषा की हल्दी की रस्म की तैयारियां चल रही थी। हल्दी की रस्म राणा मेंशन के गार्डन एरिया में होनी थी। गार्डन को हल्दी थीम के अकॉर्डिंग डेकोरेट कर दिया गया था। सब कुछ काफी कलरफुल लग रहा था। सब ने येलो शेड्स के कपड़े पहने थे। वहीं कृषा अपने कमरे में थी। वो हल्दी के अकॉर्डिंग तैयार हुई थी। उसने येलो फ्लोरल ऑर्गेन्जा क्रॉप टॉप और नीचे लॉन्ग स्कर्ट पहना था। उसने फ्लोरल ज्वेलरी पहनने के बजाय अपने बालों को फूलों से एक्सेसराइज किया था। रात को उसे मानव ने घर छोड़ दिया था। उसके बाद से उसकी अब तक युग से बात नहीं हुई थी। कृषा के चेहरे पर उदासी थी। कृषा ने आईने में खुद को देखते हुए कहा, मैंने कभी कोई इंडियन वेडिंग अटेंड नहीं की, लेकिन अमू ने हमेशा यही बताया था कि शादी की रस्में दिल से की जाती है। इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच अंडरस्टैंडिंग और प्यार बढ़ता है, लेकिन हमारे बीच तो ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ जबरदस्ती हो रहा है। ऊपर से तुम मुझसे नाराज भी हो। कल अगर मेरा थप्पड़ मारना गलत था तो तुमने भी जो कहा वो सही नहीं था। आई होप तुम पिछली बार की तरह तुम मुझे कोई पनिशमेंट ना दो। कृषा खुद से बातें कर रही थी तभी बंधन वहां हरलीन के साथ पहुंची। हरलीन ने येलो कलर का शरारा सूट पहना था तो बंधन ने उसी शेड का गाउन। अंदर आते ही उन दोनों ने कृषा को देखा। हरलीन ने मुस्कुराकर कहा, एज ऑलवेज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। कृषा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराकर रह गई। बंधन ने कहा, चलिए भाभी, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। कृषा ने उसकी बात पर हामी भरी। वो दोनों कृषा को बाहर ले आई थी। वहाँ सब मौजूद थे, लेकिन युग नहीं था और कृषा की नज़रें उसे ही ढूंढ रही थी। काफी इंतजार करने के बाद भी युग नहीं आया था। युग को वहाँ न देखकर मान्या ने तेज आवाज में कहा, वैसे तो हल्दी की रस्म में लड़के की उतरी हुई हल्दी लड़की को लगाई जाती है, लेकिन लगता नहीं कि युग इस रस्म में आएगा। चलिए ये रस्म कृषा के साथ ही कर लेते हैं। युग का वेट करना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना होगा। सगाई में दुल्हन इंटरेस्टेड नहीं थी तो हल्दी में दूल्हा, मान्या ने सार्कास्टिक वे में कहा था, और फिर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने कृषा को बेचारगी के भाव से देखा। उसकी बातें सुनकर कृषा की आंखें नम होने लगी और उसे भी यही लगने लगा कि कल रात जो भी हुआ था उसके बाद युग नहीं आएगा। क्या लगता है, युग आएगा या नहीं? अच्छा, बाकी बातें बाद में। युग को येलो कलर पसंद नहीं है। अगर वो आया भी तो कौन से कलर के कपड़े पहनकर आएगा? चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पर। बाय बाय एंड टेक केयर।